अमन और मान अपनी माँ को लेकर बगीचे के पेड़ के पास गए और अपने दादा महाराज से बात की। दादा महाराज की बात सुनकर वे हैरान रह गए। दादा महाराज ने करिश्मा जी से कहा था, करिश्मा, अमन और मान दोनों की शादी उस लड़की से करवा दो, क्योंकि सफ़ेद जिन्नों पर एक बड़ा खतरा आने वाला है जो सब कुछ बहा ले जाएगा। तुम लोग तिलस्मी पत्थर भी नहीं बचा पाओगे। दूसरी ओर वो काली शक्तियों का मालिक उस तपस्वी के पास पहुंच गया था, जिसका प्रण था कि जो भी इन 100 वर्षों में उसके पास मदद के लिए आएगा वो अपनी सारी शक्ति उसे दे देगा। और अब जैसा कि काली शक्तियों का मालिक वहां पहुंच चुका था, सो मजबूरन उस तपस्वी को अपनी सारी शक्ति उसे देनी पड़ रही थी। लेकिन उसका घमंड देखकर वे उसे आगाह कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तो वो काली शक्तियों का मालिक अपने घमंड में चूर था, उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तब करिश्मा ने कहा, भला एक इंसान लड़की कैसी दो आदमियों से शादी के लिए हाँ कह सकती है। तब जिन महाराज ने एक फल करिश्मा को देकर कहा, इस फल को उस लड़की को खिलाओ, इससे वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। तब मान ने कहा, इस तरह से किसी लड़की को वश में करके शादी के लिए हाँ कराना तो गलत होगा। उसकी बात सुनकर जिन महाराज मुस्कुराए और बोले, तुमने ये बात सोचकर एक नेक दिल होने का सबूत दिया है। और आगे बोले, पर मैं तुम्हें बता दूं, ये फल किसी को वश में करने के लिए नहीं है, केवल शांति से करिश्मा की बात सुनने व समझने के लिए है। करिश्मा को तारा को ये बात समझानी होगी कि तुम दोनों भाई उसे पसंद करते हो। करिश्मा को तुम दोनों की मोहब्बत का तारा को यकीन दिलाना होगा। ये फल उसका यकीन कायम करने में मदद करेगा। फैसला तारा को खुद ही लेना होगा अपने होशो हवास में। ये फल केवल उसे सही फैसला लेने में मदद करेगा। अपने दादा महाराज की बात सुनकर अमन और मान को काफी हल्का फुल्का महसूस होने लगा था। उन्होंने सोच लिया था कि अब सारा फैसला तारा लेगी और जो भी उसका फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। और वे तीनों उनसे विदा लेकर अपने बंगले की ओर चल दिए थे। वहीं दूसरी ओर उस तपस्वी ने काली शक्तियों के मालिक से कहा था, मैं अपने प्रण के आगे मजबूर हूँ, इसलिए मैं तुझे अपनी सारी शक्तियाँ लेता हूँ। लेकिन याद रहे, ये शक्तियाँ तुझे इतना ताकतवर बना देंगी कि कोई भी सफ़ेद जिन तुझे आसानी से नहीं हरा पाएगा और तू सब जिन्नों से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इन शक्तियों की बदौलत तू वो तिलस्मी पत्थर भी हासिल कर लेगा। और केवल एक ऐसा जिन है जो तुझे हरा सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि सफ़ेद जिन्नों के बादशाह अमन और मान का बच्चा होगा। तब अपने घमंड में चूर वो काली शक्तियों का मालिक बोला, मैं उस बच्चे को पैदा होने दूंगा, तब ना वो मुझे हराएगा। मैं उसे इस दुनिया में जन्म नहीं लेने दूंगा और ना ही किसी लड़की को मैं उन भाइयों के पास आने दूंगा। मैं मार डालूंगा हर उस लड़की को जो उन दोनों के करीब जाएगी। तब वो तपस्वी बोला, मेरी ये ताकतें हमेशा तुझे अमर रखेंगी, तो जो चाहेगा वो पालेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अच्छाई की ताकत बुराई की ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जिस दिन तेरे पापों का घड़ा भर जाएगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अभी भी वक्त है, संभल जा। तब वो काली शक्तियों का मालिक अपने घमंड में चोर होकर बोला, तपस्वी महाराज, मुझे क्या करना है क्या नहीं वो आप मुझ पर छोड़ दो, बस आप मुझे अमन और मान का सच और बता दो। तब तपस्वी महाराज बोले, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज से 100 वर्ष पहले जो सफ़ेद जिन्नों और काले जिन्नों में तिलस्मी पत्थर को लेकर लड़ाई हुई थी, इस कहानी की शुरुआत वहीं से हुई थी। उस वक्त सफ़ेद जिन्नों के बादशाह जिन महाराज और तुम्हारे गुरु काली शक्तियों के बादशाह में एक भयंकर युद्ध छिड़ा था, जिस युद्ध में तुम्हारे गुरु के 3 बेटे शहीद हो गए थे और वो बुरी तरह से टूट चुका था। उस वक्त उसे मजबूरी में सफ़ेद जिन के महाराज के सामने घुटने टेकने पड़े थे। इस लड़ाई में सफ़ेद जिन्नों की जीत हुई थी और वो तिलस्मी पत्थर भी उन्हें ही मिला था। तभी बीच में वो काली शक्तियों का मालिक बोलने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या सच में तिलस्मी पत्थर को लेकर युद्ध हुआ था? तब वो तपस्वी बोले, हाँ, 100 वर्ष पहले तिलस्मी पत्थर को लेकर काले और सफ़ेद जिन्नों में एक भयानक जंग हुई थी, जिसमें सफ़ेद जिन जीते थे और काले जिन्नों के बादशाह को उनके सामने घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन तुम्हारे गुरु के अंदर बदले की आग दहक रही थी और वो एक दिन सफ़ेद जिन के बादशाह महाराज जिन से मिलने जा पहुंचा था। जिन महाराज को भी उसके 3 बेटों की मौत का काफ़ी अफसोस था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गया था। और अपने पिता के साथ अमन के पिता भी काली शक्तियों के गुरु से मिलने गए थे। और जब वे उनसे मिले, काली शक्तियों के गुरु ने जिन महाराज को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे कुछ पलों के लिए वो तिलस्मी पत्थर ले लिया था। और तुम्हारा गुरु जो बदले की आग में जल रहा था, उसने जिन महाराज के बेटे को मारने के बजाय जल्दी जल्दी में तिलस्मी पत्थर द्वारा अमन के पिता को श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण जब जिन महाराज के बेटे को औलाद पैदा होगी वो उसी वक्त मर जाएगी। तब एक बार फिर काली शक्तियों के गुरु और जिन महाराज में जंग हो गई थी। तब जिन महाराज ने काली शक्तियों के गुरु को सजा के रूप में उस काली पहाड़ी पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया था और वो तिलस्मी पत्थर उनसे छीन लिया था। क्योंकि काली शक्तियों के गुरु की जान नहीं ली जा सकती थी, इसलिए जिन महाराज को उन्हें कैद करना पड़ा था। काली शक्तियों के गुरु को कैद करने के बाद जब वे वापस लौटे तब अमन के पिता अपने पिता जिन महाराज का हाथ पकड़कर रोने लगे थे क्योंकि उनकी औलाद पैदा होने के बाद मर जाएगी, ये निश्चित था। यही बात उन्हें परेशान किए जा रही थी क्योंकि तिलस्मी पत्थर द्वारा दिया गया श्राप किसी भी कीमत पर खाली नहीं जा सकता था। इसलिए जिन महाराज ने इस तिलस्मी पत्थर के श्राप से अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अपनी रूह की कुर्बानी देकर अमन की रूह को तीन भागों में बांट दिया था। सो जैसे ही अमन पैदा हुआ था उसके अंदर से उसकी रूह निकाल ली गई थी और जिन महाराज ने उस रूह के तीन हिस्से कर दिए। सो पहला हिस्सा था उस पर तिलस्मी पत्थर का श्राप पड़ा था और वो उसी वक्त मर चुका था, लेकिन बाकी के बचे रूह के दो हिस्से वापस अमन के शरीर में नहीं जा पाए थे, इसलिए मजबूरन जिन महाराज को मान का शरीर भी बनाना पड़ा था और एक रूह जिन महाराज ने मान के शरीर में डाल दी थी। इस तरह से अमन की रूह दो भागों में बट गई थी, लेकिन उन दोनों के केवल जिस्म अलग अलग हैं, लेकिन रूह एक है जिसके कारण वे और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। इसलिए तिलस्मी पत्थर की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई थी और जिन महाराज की रूह जैसे कि अब तिलस्मी पत्थर के श्राप को खत्म करने में खो गई थी, इसलिए जिन महाराज को हमेशा हमेशा के लिए समाधि लेनी पड़ी थी क्योंकि बिना रूह के वे और इंसानी दुनिया में नहीं रह सकते थे। काली शक्तियों का मालिक जैसे जैसे ये सारी सच्चाई सुन रहा था वैसे वैसे उसका खून खौलता जा रहा था। आज जाकर उसे उसके गुरु के काली पहाड़ी पर होने का सच पता चला था। उसके गुरु ने हमेशा उसे तिलस्मी पत्थर लाने के लिए बोला था, लेकिन आज तक तिलस्मी पत्थर का सच उसे नहीं बताया था। अपने तीन बेटे की मौत के बाद उन्हें काली पहाड़ी में कैद कर दिया गया था और मेरा मालिक, मेरा गुरु आज भी उस काली पहाड़ी में नरक का जीवन जी रहा था और उस जिन महाराज का परिवार आज भी इंसानी दुनिया में अच्छे से सांस ले पा रहा था। ये सब सुनकर और सोचकर उस काली शक्ति के मालिक का खून उबाल लेने लगा था। वो अब तक तो सोच रहा था कि तिलस्मी पत्थर हासिल करके वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन अब उसने फैसला किया था कि तिलस्मी पत्थर अपने गुरु को देकर वो अपने गुरु को आज़ाद कराएगा और जिन महाराज के परिवार से अपने गुरु की दशा का बदला लेगा।
उसके बाद उस तपस्वी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते उसके अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी थीं और वो सारी किरणें काली शक्तियों के मालिक में समाने लगी थीं और पूरे 25 मिनट तक तपस्वी महाराज की सारी शक्तियां काली शक्तियों के मालिक के अंदर समा गई थीं। उस तपस्वी ने अपनी सारी शक्तिशाली शक्तियां उसे दे दी थीं, लेकिन उसने अपनी शक्ति का एक भाग उस काली शक्ति के साथ आए सर्प महाराज को भी दे दिया था और सर्प महाराज को उसने मन ही मन ये बता दिया था कि ये शक्तियां जो मैंने तुझे दी हैं, आने वाले वक्त में ये सारी शक्तियां तुझे एक ऐसे इंसान को देनी होंगी जो इस लोक की हिफाजत करेगा। सर्प महाराज ने मन ही मन तपस्वी का शुक्रिया अदा किया था और फिर अपनी सारी शक्तियां उन दोनों को देने के बाद वो तपस्वी पंच तत्व में लीन हो गया था। उस तपस्वी के बाद वो काली शक्तियों का मालिक जोर से बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी महाराज, आपने मुझे इतनी सारी शक्तियां देकर अमर कर दिया है, अमर। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा था। वो सर्प महाराज जो उसके साथ था वो केवल एक नज़र उसे देखकर रह गया था। ये सच था, उस वक्त वो काली शक्तियों का मालिक इस दुनिया का सबसे ताकतवर काला जिन बन चुका था, लेकिन उस तपस्वी ने अपनी शक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस सर्प महाराज को दे दिया था जिसकी वजह से वो सर्प और की अधिक शक्तिशाली बन चुका था। वहीं दूसरी ओर न जाने क्यों अमन मान और अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। वैसे करिश्मा जी उसके मन की आशंका भांप चुकी थी लेकिन बोली कुछ नहीं थी। इस वक्त वो जल्द से जल्द तारापरी के पास पहुंचना चाहती थी और जल्दी ही वे माँ बेटे अपने बंगले में पहुंच चुके थे और तीनों एक साथ तारापरी के कमरे की ओर जाने लगे थे। अमन ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और वे तीनों अंदर चले गए थे। उन्होंने वहां जाकर देखा तारापरी एक वाइट कलर की चादर ओढ़े सोई हुई थी। उसके कमरे की खिड़की से चांद की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। अमन और मान दोनों के दिल में उसे देखते ही एक अजीब तरह का एहसास शुरू होने लगा था। दोनों की आत्माएं एक थीं तो ये एहसास वे दोनों अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। उसे इतनी सुकून से सोता हुआ देख करिश्मा जी का मन ही नहीं किया था कि उसे नींद से जगा सकें, इसलिए वे वहां से निकलकर बाहर की ओर जाने लगी थीं कि तभी अचानक